أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم. سچے نبی نے سچا فرمان پیش کیا ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، اپنے اہل بیت. کیونکہ 28 سفر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بھی بنا بر روایت روز شہادت ہے، اور مستند روایت یہی ہے زیادہ، اور روایت 7 سفر کی بھی ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کی روایت، تو لیکن زیادہ مستند جو ہے وہ 28 سفر کی. تو پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، اپنے اہل بیت. تو ہمارے لیے جو مثالی کردار ہے اور جو مثالی رول ماڈلز یا مثالی سیرت، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے، اور اس میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا کردار نہایت اہم ہے. امام حسن مشتبہ کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، کچھ ان کے فضائل مشترک ہیں، کامن ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک سے مخصوص ہیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں تو علم لدنی کے یہ سب مالک ہیں، یہ سب علم لدنی کے مالک، یہ سب کے سب عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، 14 معصومین علم لدنی رکھتے ہیں اور عصمت کبریٰ پہ فائز. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں، میں ان کی مشترکات اور بھی زیادہ پیش کر سکتا ہوں، ابھی وقت نہیں کہ میں ہر ایک کو الگ الگ، یعنی ہر ایک معصوم علیہ السلام کی تمام مشترکات کو پیش کروں. ان کا سیرت و کردار میں کبھی ٹکراؤ تضاد نہیں ہوگا، یعنی کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ، یعنی بہت سے لوگ ٹکراؤ یا تضاد، بہت سے جو ہیں وہ لوگ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسن مشتبہ شروع سے صلح کن تھے، معاذ اللہ سخر اللہ، اور امام حسین علیہ السلام جو شروع سے ہی جنگ جو تھے، اس لیے امام حسن مشتبہ جو ہے انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین جو ہے وہ کربلا میں جنگ پہ چلے گئے. نہیں، غلط ہے تجزیہ. اس آدمی کو آئمہ علیہ السلام کے کردار کی الف بے معلوم نہیں ہے جو یہ باتیں کرے. अगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम भी इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम की जगह होते तो वो भी सुलह ही करते, और इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलातो वसलाम अगर इमाम हुसैन की जगह पे होते तो वो भी करबला ही जाते। इनके अदवार मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो इनका दौर है, जो इनके टाइमिंग और वक्त और दुश्मन है उसके हिसाब से इनका अदवार का इख्तलाफ है, किरदार का इख्तलाफ नहीं है। उस दौर का तकाजा जो था वो इमाम हसन मुश्तबा ने किया, और जो इमाम हुसैन के दौर का तकाजा था वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने किया। 50 हिजरी में शहादत हुई इमाम हसन मुश्तबा की, 61 हिजरी में मौला हुसैन अलैहि सलाम की, 40 हिजरी में मौला अली अलैहि सलाम की। तो अब ये मौला अली अलैहि सलाम की अगर दौर खिलाफत में देखें तो दाखिली जंगें हैं, और ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे। हमारे आज से बहुत से बरादरान मुसलमान भाई जो हैं वो ये एतराज़ करते कि भाई अली ने दाखिली जंगें की, तो भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे, या अली हरबों का हरबी आपकी जंग मेरी जंग है, व सिलमों का सिलमी आपकी सुलह मेरी सुलह, जो आपके साथ सलामती में है वो मेरे साथ, और जिसने आपके साथ जंग की उसने मेरे साथ जंग की। दूसरे फरमा गए थे कि मैंने तंजील पे जंगें की हैं, आप तावील पे जंग करेंगे। तंजील यानी नुजूल कुरान के मुताबिक अल्लाह ने कहा जाहिदिल कुफार, कुफार के साथ जिहाद करो, तो मैंने तंजील कुरान पे जंग की, आप तावील कुरान पे जंग करेंगे, यानी मेरी जंगें कुफार मुशरिकीन के खिलाफ थी, आपके मुनाफिकीन के खिलाफ होंगी। और बहुत से लोग धोखा खाएंगे कि भाई ये कलमा गो थे और अली ने इनके खिलाफ जंग की है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे हज़रत अली मुश्किल कुशा सलवातुल्लाहि वसलामहु अलैहि के मुतालिक के भाई ये तावील कुरान पे जंग करेंगे। तो अब ये कहना कि भाई इनकी किरदार, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग की, मौला हसन ने सुलह की, मौला हुसैन ने क़याम किया, मौला अली तो खुद हुकूमत में थे, तो उन्होंने जंगें की उन लोगों के खिलाफ, भाई उनके खिलाफ बगावत हुई तो उन्होंने जंग की, और मौला हसन ने सुलह की मुआविया से, और मौला हुसैन ने यजीद के खिलाफ क़याम किया, हो वो खलीफा था, तो ये अलग अलग किरदार है। नहीं, इनमें से किसी को भी दूसरे की जगह पे अगर रख देते तो वो वही कुछ करते जो इनमें से पहले ने किया, या दूसरे ने, या तीसरे इमाम ने, या चौथे इमाम अलैहि सलाम ने। वो बहुत से लोग जो है आज मैं किताब दोबारा पढ़ रहे, जिहाद इमाम सज्जाद अलैहि सलाम, आसिद मोहम्मद रजा जलालीन बहुत बड़े आलिम है, अरबी में पूरी किताब लिखी है कि इमाम सज्जाद अलैहि सलाम का जिहाद क्या था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वो जो है उन्होंने क़याम नहीं किया, वो उसके बाद खामोश बैठे रहे, रोते रहे। भाई इमाम अलैहि सलाम का किरदार आपने पूरा पढ़ा है कि आप ये एतराज़ करें? खामोश रहे इमाम अलैहि सलाम ने, उनके ज़माने में जितने क़याम हुए उन सब की सरपरस्ती इमाम अलैहि सलाम ने की, तो क़याम ना करना ये इमामत क्या है? इमामत ये है कि वो हर मैदान में सबसे, यानी सबसे जो शुजा हो, जो सबसे ज़्यादा इल्म में ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा सखावत में, जूदो करम में, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा हो, शुजा दलेर। ये नहीं कि मैं सज्जाद साहब के दलेर नहीं थे इसलिए खामा, माज अल्लाह, यानी ऐसे आदमी को खबर ही नहीं, जो दीन और दुनिया में तमाम उमूर में, चाहे वो सियासत हो, चाहे हिकमत हो, चाहे जंग हो, हर चीज़ में जो सबसे आगे हो वो इमाम है, हुज्जत खुदा। तो आज जो बहुत से लोग कहते थे कि भाई इमाम अलैहि सलाम ने उस ज़माने में खामोशी इख्तियार की, तो यानी वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के उस रविश पे माज अल्लाह नहीं चले, ना, इस आदमी को अलिफ बे मालूम नहीं सीरत आइम अलैहिस्सलाम, किसी ने इमाम सज्जाद की ज़िंदगी पढ़ी ही नहीं। भाई हिकमत और उस वक्त मसलहत यही थी कि इमाम डायरेक्टली जो है वो करबला के बाद इन्वॉल्व ना होते, ताकि तशय्यो तरक्की कर सके, शिया कमज़ोर थे, शिया वाक़े करबला के बाद उनका मॉरल डाउन हो गया था, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाक, इमाम हुसैन को बाकायदा कलमा गो अपने आप को मुसलमान कहने वालों ने मार दिया। तो इमाम सज्जाद अलैहि सलाम अब उन लोग, अब यानी उसमें गिरिया भी करते हैं, मजालिस बर्पा भी कर रहे हैं इस दौरान, इसी दौरान जो क़याम हो रहे हैं उनकी भी, जैसे हज़रत मुख्तार का क़याम हुआ, उसकी इमाम ने रहनुमाई की, तवाबीन के जो, या मुख्तलिफ जो क़याम थे उनकी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ की मुखालफत भी की, जैसे ज़ुबैरियों का था, जैसे और थे बहुत से क़याम थे, या उन्होंने कहा नहीं, ये लोग हमारे से मुखलिस नहीं, हमारा नाम लेते हैं। तो लेकिन अब ये तमाम अदवार को समझना बड़ा जरूरी है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम का आया, ये स्ट्रेटजी थी, टैक्टिक था। अब बहुत से लोग सियासत से भी नाबलद होते हैं और आइम्मा की इस्मत को समझ ही नहीं सकते। तो अब वो इमाम अलैहि सलाम के जो है वो किरदार के मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। भाई इमाम मासूम है, तो उनका हर फेल उसके अंदर ये दुनियावी सियासत जो आजकल चल रही है कि जिसके अंदर सच और झूठ और अच्छा बुरा के भाई एंड जस्टिफाइज द मीन्स, अस्तग़फिरुल्लाह। लोग जो हैं जो इंग्लिश में कि भाई नतीजा हासिल करने के लिए आप जो हैं जो मर्जी तरीक़ाकार अपना सकते हैं हुकूमत हासिल करने के लिए, कुछ नहीं। ये आइम्मा अलैहिस्सलाम का किरदार नहीं है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने अब क्यों सुलह की, ये मैं जल्दी इशारे करना चाहता हूँ। तो आज हम जब अपनी जिंदगियों के अंदर या बड़े बहुत से लोगों के हाथों में बड़े बड़े फैसले आ जाते हैं, उनको करने होते हैं, बहुत से ज़्यादातर आवाम के हाथ में तो ऐसे फैसले नहीं होते। तो अब हम किस तरह से इन फैसलों को समझें और किस तरह से इमाम हसन मुश्तबा के किरदार को समझें, तो ये किरदार का समझना बड़ा ज़रूरी है। अव्वलन तो खुद इमाम हसन मुश्तबा सिफीन में मौजूद थे उस जंग में मुआविया खिलाफ, और जब उसने पानी बंद कर दिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़ौज का, मौला को आगे खबर दी, तो मौला हसन मुश्तबा ने कहा बाबा जान मुझे इजाज़त दे, मैं पानी जो इन्होंने पानी बंद कर दरिया का रास्ता बंद कर दिया हमारी फौज के लिए, ये पानी मैं छुड़वाऊंगा। लहरन दजला फुरात नहीं, दजला ये मेरे रहम में सुभारत, दोनों दरियाओं में से एक दरिया है, क्योंकि वो ये इनमें से एक दरिया जो है वो पूरा जाता है शाम और तुर्की की तरफ से आता है, ये क्या तो ये बड़ा दरिया है। तो कहा कि भाई मैं पानी छुड़वाऊंगा। मौला ने इजाज़त दी और कहा कि भाई आप सब लोग इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, और रसूल खुदा ने कहा था मेरे दोनों बेटों की हिफाजत कर देगा। अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया कि नद अबना अना व अबना कुम व निसान, हम अपने बेटों को लाएंगे तो अपने बेटों को लाओ, तो ये हसन हुसैन अल्लाह ने जब कह दिया कि रसूल के बेटे, तो कभी जनाब अमीर ने जो है वो उन्हें काम के लिए नहीं कहा, हुक्म नहीं दिया कर, नहीं, अल्लाह ने कहा ये रसूल खुदा के बेटे, मैं रसूल खुदा के बेटों को हुक्म नहीं देता। यानी हर काम जनाब मोहम्मद हनफी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहते थे। तो बहरहाल तो कहा भाई इनकी, और मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने हमला किया, जंग की मुकाबला किया, वो जंग देखने वाली थी मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की, कि जो कहते हैं कि नहीं सुलहकुन थे, कोई जंग नहीं करते थे, लोग सिफीन के मैदान में आपकी जंग देखने वाली थी, जब आपने हमला किया अकेले, मौला हसन मुश्तबा ने हमला किया, फौज पीछे रह गई, आप अकेले हमला करते हुए इतने आगे बढ़े कि पूरे लश्कर को शामियों के उठा के पीछे फेंक दिया और पानी पे कब्जा कर लिया। मौला हसन मुश्तबा ने जब कब्जा कर लिया पानी पे, तो फिर आपने फरमाया, कहा कि भाई ये पानी हमारे अपनी फौज से, कहा कि अब यहाँ पे तुम अपना कब्जा कर लो, पानी पियो और पीने दो। तो आपके लोगों ने कहा कि मौला हम उनका पानी बंद कर दे, मौला ने कहा नहीं, कहा लेकिन उन्होंने जब पानी पे कब्जा किया था, दरिया पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था, मौला ने कहा वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार है, हम पानी बंद नहीं करेंगे। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे थे मुआविया खिलाफ, यानी क्यों, जबकि मौला जानते हैं कि मेरी शहादत हो जाएगी, मुझे जो है अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम लानतुल्लाह अलैह ज़रबत लगाएगा और मेरी उसमें शहादत हो जाएगी, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे थे। भाई ये तैयारी इसलिए कर रहे थे कि दुनिया को पैगाम देना चाहते थे कि अब मैं राजी नहीं हो गया उससे, हकमियत के मसले के बाद मेरे उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो गए, तो अब जो भी हज़रत अली का मानने वाला है कभी भी उसके मुतालिक अच्छा तसव्वुर और अच्छा ख्याल नहीं रख सकता कि मौला वक्त शहादत तक पैगाम ये दे रहे हैं कि मैं इससे राजी नहीं हूं। उसने बगावत की है, उसने हुकूमत इस्लामी को तोड़ा, उसने हाकिम वक्त यानी मेरे खिलाफ। तो बहरहाल तो इमाम हसन मुश्तबा भी जंग की तैयारी कर, जंग आपने फौज बनाई और वही जो फौज, और फिर हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को रज़ी अल्लाह अन्हु को, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के छोटे भाई, हजरत अब्बास जो चचा थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके बेटे थे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, उन्हें अपना सिपा सालार बनाया और भेजा और जंग के लिए। अब चाहते जंग थे मौला हसन मुस्तफा सलाम, लेकिन जंग कैसी हुई कि उसने पैसे दिए जो मौला के साथ भी हो चुका था पहले, मौला अब्दुर्रहमान अलैहिस्सलाम के साथ, कि लोग सिफीन में मौला का साथ छोड़ के चले गए थे, वो खवारिज बने, फिर उनके साथ नहरवान की जंग हुई, वो सब के सब नहरवान में तो नहीं आ गए थे, तो यानी उनमें से जो 10,000 का मजमा आया वो मौला के हाथों मारा गया, उसमें 7 अफराद बचे और मारा। अब वो मेरा मौजू नहीं, लेकिन मौजू ये है कि भाई उनमें से बहुत से लोग कूफे आ गए, फिर वही दोबारा फौज में आ गए, फिर वही दोबारा सब कुछ उन्होंने रिपीट किया जो मौला अली अलैहि सलाम के साथ किया था, उनका साथ छोड़ा, यहाँ पे मौला हसन का साथ छोड़ दिया। आधी फौज जो है वो पैसे खा के, एक बहुत बड़ा एतराज़ जो जनाब अमीर अलैहि सलाम पे था कि भाई पिछले हम फौजों में लड़ते थे, पिछले खुलफा के ज़माने में तो हम हमें माल गनीमत मिलता था, और अब मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में माल गनीमत, मौला कहते थे भी जो भी हो बहरहाल जमल में हैं तो मुसलमान हमारे मुकाबले में, इन्हें लूट नहीं सकते। तो अब मौला की तरफ से लड़ने वालों को ये बहुत बड़ा एतराज था कि भाई ये क्या बात है, भाई हम इनका माल क्यों नहीं छीन सकते जब जंग हो रही है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के उसूल पसंदी को बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आपने उसी अंदाज से जब फौज को तैयार किया, तो अब दोबारा जब उसने पैसे वगैरह देना शुरू किया, उसने देखा कि भाई ये कूफे के लोग खरीदे जा सकते हैं, तो उसने काफ़ी उनको भेजा का कि सबको पैसे बांटो और कहो कि भाई हम लोग कूफे पे कब्जा कर लेंगे, हमारा साथ दो। अभी बाद में यही कुछ हुआ, हज़रत मुख्तार के साथ हुआ और लोगों के साथ हुआ, तो आधी फौज, मौलाना का फिर भी मैं जंग करूंगा, वो जो आधी फौज रह गई थी उसमें से भी आधी फौज फिर दोबारा, यहां तक कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास जो हैं वो पैसे पूसे, यानी उनके भी तक मुतालिक लोग कहते हैं वल्लाह आलम। तो अब लेकिन फौज जो है उसने साथ नहीं दिया, और यहां तक कि मौला हसन मुश्तबा के साथ बगावत की, और जब वह नमाज यानी अपने खेमे में तनहा पढ़ते थे, आपके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जमात नहीं हो रही, मैदान करबला में जंग हो रही है, फिर भी इमाम हुसैन जोहर की जमात पढ़ा, फजर की भी जमात पढ़ाई, जोहर की भी, असर में तो तनहा रह गए थे। तब सोचने की बात है, बहरहाल यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं बनी हाशिम कहाँ थे, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, बाबा के साथ जो कुछ हुआ और फिर अब जो मेरे साथ हो रहा है, इब्तदा में अहले बैत अलैहिस्सलाम को साथ रखा था, फिर बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बहन भाइयों को लेकर वापस मदीने चले जाइए, और हज़रत अब्बास को सब बहन भाइयों को भी भेज दिया, और यहाँ तक कि अपने फैमिली को, अपने भी कुनबे को कहा मेरे भी अजवाज मेरे बच्चों को आप मदीने ले जाए। तो अब यहां तक है कि इमाम हसन मुश्तबा अपने खेमे में तनहा नमाज पढ़ रहे हैं अपने, और उनके पांव तले से मुसल्ला खींच लिया गया, आप जो हैं वो बाकायदा मुंह के बल जमीन पर गिरे और आपके दंदाने मुबारक से खून बहने लगा। तो यानी इस हद तक लोगों ने आपकी मुखालफत की या आपका साथ नहीं दिया, जैसे जान जनाब अमीर को शहीद कर दिया, यानी खवारिज में से था अब्दुर्रहमान ने बोलिए, वो जो टूट के अलग हो गए थे उनमें से था, जो खवारिज से जो उनमें जो जंग में आ गए थे मौला के खिलाफ लड़ने के लिए जंगे नहरवान में, उनमें से जो 7 लोग बचे उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था मलऊन। तो बहरहाल अब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जो लोग मिले वो थे वो ऐसे, तो अब आपकी जो जिम्मेदारी और जो आपने जिस तरह से निभाया चीजों को, जिस तरह से हालात बने, वो बड़े मुश्किल थे। उन हालात में मौला हसन मुश्तबा आप कूफे आ गए, और कूफे में आने के बाद मुआविया ने क्या किया कि एक ब्लैंक पेपर पे दस्तखत करके भेज दिए, एक ब्लैंक शीट पे, एक बिल्कुल साफ सफा था उस पर दस्तखत किए, काफी सुलहनामा दस्तखत कर दें और आप जो चाहें शरायत लिख लें। मौलाना ने कहा इसके सामने सुलह नहीं करूंगा। अब कूफे वाले क्या करने लगे, اعتراض کرنے لگے کہ بھی جب اس نے کہا جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں تو پھر آپ کیوں نہیں صلح چاہتے؟ تو اب یہ بہرحال بہت سے علماء یہاں پہ قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اگر یعنی اگر دو مسلمان گروہوں میں جنگ ہو اور اگر ایک ان میں سے صلح کی بات کرے تو پھر صلح کر لو. تو یہ اس اصول کے تحت آپ نے صلح کی. تو آپ نے پہلے کہا کہ نہیں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف. پھر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور وہ صلح کے لیے کہہ رہا ہے, مولانا نے کہا بھائی صلح اس سے کی جاتی ہے جو دل سے تسلیم کرے, مان لے. میں جانتا ہوں یہ صلح کی شرائط کو مانے گا ہی نہیں, اس نے دستخط کر دیے لیکن یہ مانے گا نہیں, یہ وائلیٹ کرے گا, یہ صلح کی شرائط کو توڑ دے گا. اس لیے جو ہے میں صلح نہیں چاہتا. کہ نہیں آپ جو ہیں وہ. تو بہرحال اب یہ جو حالات تھے ان حالات میں صلح مصلحت تھی, نہ یہ کہ آپ کی پرائیورٹی صلح تھی یا آپ کی کا اولین فیصلہ صلح تھا. تو آپ نے اس وقت جو صلح کی ان حالات کے تحت کے, یعنی جو کہ اگر ان میں سے ایک گروہ چاہے صلح کرے تو کہ بھی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن کریم کے مطابق نہیں چل رہا ہے, اور لوگوں میں بصیرت اور امام کی فرما برداری اور امام کی کے فیصلے پہ اوبیڈینس موجود نہیں تھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک باغی اگر جو ہے وہ صلح کے لیے کہہ رہا ہے اور تم لوگ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے, علامہ اقبال نے جو بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ پشت پا زد بر سر تاج و نگین, کہ امام حسن مجتبیٰ نے تاج حکومت کو ٹھوکر ماری اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. صلح نہیں تھی, تاج اور تخت کو, حکومت کو جو ہے وہ اس زمانے کے آپ نے ٹھوکر مار دی تھی. تو اب جب آپ نے شرائط لکھی تو دیکھیں صلح کی شرائط سب کچھ بتا دیتی ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کا موقف, آپ نے پہلی شرط لکھی, کہا کہ بھئی یہ جو ممبروں سے میرے بابا کی توہین کی جاتی ہے اور جمعے کے خطبے میں یعنی نام لے کے جناب امیر علیہ السلام کا نفرین کی جاتی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ حبیب, تبرہ کیا جاتا ہے جناب امیر علیہ السلام پہ ممبروں سے, اس کو روکا جائے, معاویہ اس کو رکوائے. اب آپ دیکھیں کیسی صلح, جس صلح کی پہلی شرط یہ ہو اور صلح ہونے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ واپس مدینے چلے گئے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. چار یا پانچ شرائط مولانا عباس نے زیادہ بھی لکھی ہیں کہ سات شرائط تک, یعنی وہ کچھ لوگوں نے ان کو ملا کے لکھ دیا ہے تو چار لکھتے ہیں, کچھ ان کو الگ الگ کر کے لکھا کہ نہیں سب الگ الگ شرائط تھی تو سات تک لکھا ہے انہیں. تو مولا نے یہ جو شرط رکھی یہ شرائط ان پہ عمل نہیں ہوا, جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے صلح؟ پہلی شرط رکھی کہ میرے بابا کی توہین نہ کی جائے, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھے کہ ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی پھر بھی, اور بعد میں جاری رکھا گیا, بعد تک جاری رکھا گیا, نہ صرف یہ کہ معاویہ کے اپنے دور حکومت میں جاری رکھا گیا, معاویہ کے بعد جاری رکھا گیا, اور یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں, جب دوسرے امام شرط رکھ رہے ہیں, چھٹے امام کے زمانے میں جا کے جناب امیر علیہ السلام کی جو ممبروں سے توہین ہوتی تھی اس کو روکا گیا. تو آپ نے پہلی شرط رکھی کہ میرے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو توہین کی جاتی ہے اس کو روکا جائے. دوسری شرط کہ معاویہ جو ہے وہ اپنے بعد کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کرے گا, خصوصاً اب لوگ اس کو الگ دو دو شرائط دیتے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان ہے, دوسرا لکھتے ہیں بیٹے کے متعلق کہ یزید اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان نہیں کرے گا. اس نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا, وہ خود اعلان کر کے گیا اپنے بیٹے کی خلافت کا اور کہا میرے بعد میرے جو خلیفہ ہوگا میرا بیٹا یزید ہوگا, اس نے خود اپنے بیٹے کا اعلان کیا. اور آپ میں شرائط میں سے کوئی الگ الگ لوگ لکھتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو سب کو دوسری شرط رکھا ہے, کچھ نے اس کو تین چار شرائط رکھ دیا, یہ دو پہلی جو بیان کی, اور ایک کہ بھائی खिलाफत जो है और उम्मत मुस्लिमा की इमामत और खिलाफत, ये सब कुछ मेरा हक है, लेकिन मौला जानते हैं कि ये मुझे जहर दिलवा के शहीद कर देगा। तो आपने फौरन कहा कि भी ठीक है, तो अगर मेरा हक है यानी मैं, मुझे ये हुकूमत मिलेगी, लेकिन अगर मैं ना रहा तो मेरे भाई हुसैन का हक है, इस पे भी अमल नहीं किया गया। फिर आपने शर्त में से एक शरायत में से एक शर्त रखी कि ये जो कूफे के बैतुल माल में पैसे रखे हैं, मुआविया इन पैसों को शाम नहीं ले जाएगा, इन पैसों को यहीं कूफे में मेरे अख्तियार में रहने दे। क्यों? मौला से पूछा तो मौला ने फरमाया, क्योंकि मेरे बाबा के जो मानने वाले हैं, जो शिया ने अली हैं, जो अली के शिया हैं यहाँ कूफे में रहने वाले, ये उन सबको क्या करेगा, उनका वसीफा बंद कर देगा, जो उनको बैतुल माल से, जो मुसलमानों को जमाने में थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, जो वजीफा मिलता था, का ये बंद कर देगा और वो सब फाकों पे आ जाएंगे और बहुत से मजबूर होंगे इसको तस्लीम करने पे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे उन शियों में तकसीम किए जाएँ, उनको बांटे जाएँ, उनको दिए जाएँ। ये जो है वो ज़ाहरा उस ज़माने में 12 लाख दिरहम या दिनार थे, किसी भी शर्त पे अमल नहीं हुआ। मौला हसन मुश्तबा ने सारी शरायत लिख के उसके ऊपर दस्तखत करके उसको भेजा, उसने पढ़ा, उसने उसको नादीदा गिरफ्त, फारसी में जैसे कहते हैं, उसने उनको कुछ समझा ही नहीं, उस पर अमल ही नहीं किया, उनको बिल्कुल वायलेट किया तमाम शरायत। तो अभी मैंने 4 शरायत की शुरुआत में पेश किया, लेकिन इसको कुछ लोग 7 कद तक बयान करते हैं, उसी के अंदर जो अलग अलग। और इसी तरह से और कि जी कुरान, यानी कुरान की और मेरे जद रसूल खुदा की तालीमात के मुताबिक तमाम के तमाम हुकूमती मामलात को और शरीयत के पामाल नहीं करेगा, उसकी पाबंदी करेगा। तो अब ये देखा जाए तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के, तो मैं पेश कर रहा था कि मखसूस जो फ़ज़ाइल हर एक में से शुरू मैंने किया था, मैंने कसुल हसन को पेश कर दूँ, तो जो मुश्तरकात हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो सब में हैं, जैसे इल्म लदुन्नी, इस्मत कुबरा, कुछ हैं इनमें से एक एक से मखसूस हैं। और उसी किस्म में मैंने ये पेश किया था कि भाई ये तादाद नहीं है कि किरदार में ये मासूम हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, इनमें सब में तदब्बुर है, इन सब के अंदर वही बसीरत और हिकमत है। तो अब जो इनके हर एक के मखसूस फ़ज़ाइल हैं जल्दी पेश कर दूँ कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मखसूस फ़ज़ाइल, कि वही सिर्फ़ ख़ातमुन नबीयीन है, वही सैयदुल मुरसलीन है, वही रहमत लिल आलमीन है, वही इमामुल अंबिया है। बहरहाल इसी तरह से कुछ चीज़ें मखसूस हैं जनाब अमीर से, सिर्फ वही दामाद पैगंबर है, सिर्फ वही ज़ौज बतूल हैं, सिर्फ वही सैयदुल औलिया हैं, और सिर्फ यानी बहरहाल ऐसे मौला से बहुत से मखसूस, उनको फातह खैबर कहा जाता है, साहिब ज़ुल्फ़िकार है, जनाबे सैयदा सलाम अलैहा की वही सिर्फ सैयदतुन निसा है। खातून जन्नत है। बहरहाल दो जुमले सिर्फ इमाम हसन से मुताल्लिक़ सुन लीजिए, क्योंकि वक्त तमाम हो चुका है, मुझे थोड़ा तफसील से मसाइल पढ़ना था। तो अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है कि ये सब के सब करीम हैं, अल्लाह के नाम से करीम है, रसूल खुदा करीम है, रसूल करीम, करीम यानी बहुत सखी, सखी में करीम में फ़र्क है, सखी वो जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, करीम वो जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए करीम। लेकिन करीम अहले बैत सबसे ज़्यादा जो करीम है अहले बैत अलैहिस्सलाम में, वो इमाम हसन मुश्तबा, सखी ने करीम, करीम अहले बैत, यानी इनकी सखावत इतनी मशहूर है कि आज तक दुनिया में दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा मशहूर है। जहां कहीं पे भी लोग दस्तरखान करते हैं मौला हसन मुश्तबा के नाम पे दस्तरखान किया जाता है। इमाम का दस्तरखान जारी रहता था, यहां तक कि लोग ताज्जुब करते थे कि भाई हुकूमतों ने इनसे फदक छीन लिया, इनके बागात, बाबा के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बागात को छीन लिया था। अवाली जो पूरा इलाका था वो मौला जनाब सईद असलम को रसूल खुदा ने दिया था। इस तरह से और बहुत सी चीज, लेकिन उसके बावजूद मौला हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी रहता है। दिन रात जो मर्जी आए, जब चाहे कोई गरीब मिस्कीन मदीने में, मदीने से बाहर से लोग आए, आके जब चाहे खाने को मांग ले, मौला का दस्तरखान जारी रहता था। और बहुत ही इमाम हसन मुश्तबा जो हैं उनकी बख्शंदगी मशहूर थी, और आपके बेटों को मैदान करबला में जनाब कासिम और अब्दुल्ला हसन मुसन्ना, जो इतने करीम हों, इतने बख्शंदा हों, इतने अता करने वाले हों, उनके भाई और बेटे मैदान करबला में भूखे प्यासे रहे, भूखे प्यासे रहे। इमाम हसन मुश्तबा को 6 दफा जहर दिलवाया माविया ने, मुख्तलिफ तरीकों से जहर दिलवाता रहा, यहां तक कि अशा से किंदी कूफे का एक मशहूर नामवर आदमी था, अशअस इब्न कैस है, उससे कहा अपनी बेटी ब्याह दो इस इमाम हसन मुश्तबा से। उसने अपनी बेटी का जबरदस्त रिश्ता दिया, ऐसा नहीं मौला, उसका उस बेटी का नाम था जोदा, जोदा बिनते अशअस। वो मदीन कूफे में शादी हुई थी मौला, फिर वापस मदीन, जब मदीने आ गए तो वो भी मदीने आ गई। तो ये बड़ा मसला होता है ना कि जिसकी जिस किसी की बाहर सुकून ना मिले, घर आता है तो घर में बीवी बच्चों में माँ बाप से सुकून मिलता है, और अगर बीवी भी एक ऐसी बीवी हो कि जो जहर देने वाली हो तो सुकून बर्बाद हो जाता है। तो मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम के घर में जो एक बीवी थी, अजवाज तो ज़्यादा हैं लेकिन 6, क्योंकि एक का इंतकाल हुआ फिर आपने और शादी कर ली, और एक का, तो ये कुल अजवाज आपकी कुछ इंतकाल कर गए, कुछ रहीं। तो ये जोदा बिनते अशअस, इसने बारहा जहर दिया। एक मरतबा ऐसा मुआविया ने जहर भेजा कि भी ऐसा जहर दिया कि अब ये बचेंगे नहीं, और कहा कि भी मैं तुम्हें 5,000 सिक्के दूंगा और अपने बेटे यजीद से शादी कर दूंगा, और बहुत कुछ वादे किए। मौला इमाम हसन मुश्तबा ने जब उसने जहर दे दिया जोदा बिनते अशअस ने, मौला ने कहा याद रख, वो जो पैसे देगा तू अपनी बीमारी पे मसरफ कर देगी, तेरे काम नहीं आएंगे, और वो अपने बेटे यजीद से तेरी शादी नहीं करेगा। वही हुआ कि उसने कहा कि जब तूने हसन मुश्तबा जैसा शोहर उसको जहर दे दिया तो मेरे बेटे यजीद का तू क्या करेगी, अगर कोई और तुझे पैसे देगा तो उसको ही मार देगी। और मौला ने जाहिरन उसको ये भी कहा कि तू दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, और वो पागल ही हो गए। जब उसने जहर दे दिया तो एक मरतबा मौला हसन मुश्तबा उसने दूध में या किसी खाने की चीज़ में, शरबत में जहर दिया। तो एक मरतबा मौला हसन मुश्तबा की जो हालत देखी उसने, तो मौला ने एक मरतबा किसी अपने खादिम से या किसी से कहा मुझे तश्त ला दो। जब तश्त लाए तो मौला ने जब कह की तो मौला कहने लगे मेरे जिगर के टुकड़े आ रहे हैं, खून बहरा, मेरा जिगर पानी हो गया है। अब एक मरतबा देखा तो खुद जोदा रोने लगी। मौला ने कहा, क्या बात है, तेरा काम हो गया, तू चाहती थी जो वो तूने हासिल कर लिया, तूने जहर देना था तूने जहर दे दिया, अब रो क्यों रही है। कहा, मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि अभी आपके भाई और बहनें आएंगे सब, और वो आपसे आके पूछेंगे किसने जहर दिया, तो आप उन्हें बता देंगे कि मैंने जहर दिया है। मैं इस बात से शर्मिंदा हो रही हूं कि मैं उनके सामने क्या जवाब दूंगी, वो मुझसे पूछेंगे कि तूने क्यों जहर तूने क्यों जहर दिया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए रो रही। तो आपने कहा, ठीक है, तू पिछले दरवाजे से निकल जा। जब उसे पिछले दरवाजे से निकलने के लिए, इतने करीम है कातिला को कहने चली जा, तुझे खुदा सजा देगा, मैं तुझे सजा नहीं देता। वही हुआ, उसे सजा बड़ी सख्त मिली। इतने में इमाम हुसैन अलैहि सलाम आए, इमाम हुसैन बुलंद आवाज से रोने लगे भाई ये किसने हमें आपकी शफकत से महरूम कर दिया, ऐ मेरे भाई हसन, किसने महरूम किया। तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने एक मरतबा देखा तश्त में तो आपने फौरन इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि मेरे भाई ये तश्त छुपा दें। कहा, क्यों भैया, तश्त को क्यों छुपा दूं। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया, तो इमाम हसन ने कहा कि भाई अभी ज़ैनब अम्मु कुलसूम आएंगी मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी मेरे जिगर के टुकड़ों को, मेरे ये जो ये तश छुपा दीजिए। और जब इमाम हुसैन को रोता देखा, उन्होंने आने के बाद इमाम हसन को उनको सर उठाया, जानों पे रखा, सीने से लगाया भाई को तो इतने में बहनें आने लगी, तो जनाबे सईदुल शहदा से इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि हुसैन मुझ पे सब रोएं लेकिन आप मत रोइएगा कहा मैं क्यों ना रोका, कहा ला योमा का योमे का या अबा अब्दुल्लाह। ये जो मसायब में अरबों में सबसे पहले जब मसायब शुरू करते हैं तो ये जुमला कहा जाता है कि कोई दिन इमाम हुसैन के करबला जैसा नहीं है। तो वहां जनाबे ये इमाम हसन मुश्तबा का जुमला आपने फरमाया, ए हुसैन आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं है, इतनी बड़ी फौज लाई जाएगी आपके मुकाबले में और आपको भूखा प्यासा ज़िबह कर दिया जाएगा, मुझ पे सब रोए हैं हुसैन आप मत रोइएगा। तो इमाम हसन मुश्तबा ने बहुत गिरिया किया अपने भाई पे कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आज भी आप पे रोए हुसैन, आप मुझ पे रो रहे हैं, मेरा तो दिल करता है मैं आज भी आप पे गिरिया करूं। बस भी भाई ने भाई को प्यार किया, दो भाइयों की अजीब गरीब, इमाम हसन हुसैन की और मौला अब्बास की मौला हुसैन से दोनों भाइयों की शहादत मौला हुसैन ने देखी। यहां इमाम हसन मुश्तबा को इस हालत में, वहां जनाब अब्बास को आंख में तीर लगा बाजू कलम, दोनों हालतों में मौला हुसैन ने भाइयों को देखा। बस भी एक मरतबा सबके सब आने लगे, कहा किसने ये हमें आपसे महरूम कर दिया। बस भी एक मरतबा मौला हसन मुश्तबा ने कहा, मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन से कहा, मेरे भाई मुझे खुद गुस्ल कफन दीजिएगा, मेरा जनाजा आप पढ़ाइएगा। फिर फरमाया, कहा कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफनाइएगा, लेकिन अगर इजाजत ना मिले लोग दफनाने ना दे तो मुझे मेरी माँ के पहलू में, शेख सदूक ने रिवायत लिखी है कि मुझे मेरी माँ के आलम आली में, मुझे मेरी माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफना दीजिएगा, मुझे मेरी माँ के पाइंती में दफना दीजिएगा, लेकिन मुझे जंग ना कीजिएगा, ये नाना का शहर है, नाना के शहर में जंग ना कीजिएगा, तलवार ना उठाइएगा। बस भी एक मरतबा मौला हुसैन अलैहि सलाम, मैंने तमाम कर दिया, दो से चार मिनट की जहमत दूंगा। मौला हसन मुश्तबा बहनें आईं, एक मरतबा सब रोने लगीं। मौला हसन ने सबको वसीयतें की, अभी जब लेटे एक मरतबा का, मुझे लेटा दो, मेरे सीने में दर्द है। तो एक रिवायत में एक छोटा सा बच्चा, डेढ़ दो बरस का बच्चा कहीं से खेलता, डेढ़ पौने दो बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और बाबा के सीने पे चढ़ गया, सीने से लिपट के, बच्चे बच्चों की आदत होती है बाप के सीने पे लेटने की, कहीं से एक बच्चा आया कि एक मरतबा माँ ने कहा, बेटा बाबा के सीने में दर्द है उतर जाओ कासिम। मौला हसन ने कहा, नहीं मेरे लाल को मेरे सीने पे रहने दो, मुझे अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, मेरा दिल कहता मौला हसन की आंखों में करबला चल रही होगी, देख रहे होंगे मेरा लाल कासिम अपने घोड़े की पुश से गिर रहा है। بس بھائی وقت نہیں مصائب کا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ بس بھائی مولا حسن مشتبہ کو بڑا اہتمام کیا مولا حسین نے، سارے بھائی جمع ہو گئے. ایک مرتبہ تابوت اٹھا گھر سے، غسل و کفن جنازہ، تابوت اٹھا، بہنیں بیٹیاں سارے سارے خاندان کی بیویاں بچے جمع تھے مولا حسن کے تابوت پہ، سب رو رہے تھے. جناب زینب کبرا نے ودا کیا، ایک مرتبہ بھائیوں نے تابوت اٹھایا بڑے شان و شوکت سے، جنازہ اٹھا، امام حسن مشتبہ کا روضہ رسول پہ گیا، وہاں پہ ایک زوجہ رسول نے روکا کہ میں اپنے اب میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی حسن مشتبہ کو. ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کچھ جملے کہے، اشعار پڑھے، کہا تجمل تھی تبغل تھی ولو اشتی تفیل تھی لکے تس ام نسم نے وفی کل تصرف تھی، اشعار پورے نظم ایک مرتبہ کہی کہ آپ کبھی جمل پہ اونٹ پہ سوار ہو کے جنگ جمل میں آئیں، آج خچر پہ سوار ہو کے آپ اگر زندہ رہ گئیں تو اگلی دفعہ ہاتھی پہ آئیں گی. یہ میرے بھائی کا بھائی، اگر رسول خدا کے بیٹوں کا نواسوں کا حصہ نہیں تو پھر آپ اکیلی کیسے سب کچھ مصرف کر سکتی ہیں؟ یہاں بیٹوں کا ایک مرتبہ کا تیر چلاؤ، مولا حسن کے لاشے میں تیر برسائے گئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا میں تلوار سے جنگ کروں گا کسی کو اپنے آقا حسن کے لاشے پہ، مولا حسن کے لاشے پہ تیر نہیں برسانے دوں گا. مولا حسین نے جناب عباس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، عباس نانا کا روضہ ہے، بھائی حسن کی وصیت تھی جنگ نہ کرنا، میں کہوں گا مولا نہ آج جنگ کر سکے آپ، نہ کربلا میں اجازت ملی. ایک مرتبہ واپس گھر پہ لاشا لائے، ابھی بھی بہنیں دروازے پہ کھڑی تھی، جناب زینب نے دیکھا کفن دوبارہ واپس تابوت آیا، کفن سرخ تھا، لاشے میں 70 یا 72 تیر تھے. ہائے جناب زینب، ایک بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالا، دوسرے کا لاشا تیروں پہ. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.